नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो पांचमा स्कंद पंदरमा अध्याय श्लोक अग्यारमा चंदांसी अकांस यस्य कामान चंदांसी अकामस्य च यस्य कामान दुदुराजरुरथो बलिम नुपा दुदुराजरुरथो बलिम नृपा प्रत्यांचिन्ता युधि धर्मेण विप्रा प्रत्यांचिन्ता युधि धर्मेण विप्रा यदा सिसां शास्तं हंसं परयेतया यदा सिसं शास्तं हंसं परेत्या छंदांसी वेदों के समस्त अंग अकामस्य निष्काम च बी यस्य जिसकी कामना समस्त इच्छाएं दुदुहु प्रदान किया। इतने शांत की हो थोड़ा प्रेम से प्यार से बोल सकते हैं सब लोग। आजहु अर्पित किया अथो इस प्रकार बलिम भेंट बलि नूपा सभी राजा प्रत्यंता उसके विपक्ष में युद्ध करने से संतुष्ट होकर युद्ध में धर्मेण धार्मिक नियमों से विप्रा समस्त ब्राह्मण यदा जब आशीषामा आशीर्वादों का षष्ठम अंशम छठा अंश परेत्य अगले जन्म में तात्पर्य अनुवाद प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की यद्यपि महाराज गए में इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी। जिन राजाओं से महाराज गय को युद्ध करना पड़ा वे धर्म युद्ध करते के लिए विवश हो जाते। वे महाराज गए के युद्ध से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंट प्रदान करते थे। इसी प्रकार से उनके राज्य से समस्त ब्राह्मण अनेक मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे। फलस्वरूप ब्राह्मण ने राजा गए को अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए अपने पूर्ण कर्मों का छठा अंश सहर्ष प्रदान किया था। तात्पर्य क्षत्रिय होने के नाते महाराज गय को अपना शासन स्थिर रखने के लिए कभी कभी अधीनस्थ राजाओं से युद्ध करना पड़ता था किंतु अधीनस्थ राजा कभी भी उनसे असंतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि महाराज गय धार्मिक नियमों के लिए लड़ते थे, फलत वे उनकी अधीनता स्वीकार करते करके उन्हें नाना प्रकार की भेंट अर्पित करते रहते थे। इसी प्रकार वैदिक अनुष्ठानों में रथ ब्राह्मण जन भी राजा से अत्यंत संतुष्ट रहते थे, यहाँ तक कि वे सहर्ष अपने पूर्ण कर्मों का छठा अंश उनके अगले जन्म के लाभार्थ प्रदान करके लिए राजी हो गए। इस तरह ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सभी महाराज गय से अत्यंत संतुष्ट थे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महाराज गय ने क्षत्रिय राजाओं को अपने युद्ध से तथा ब्राह्मणों को अपने दान से संतुष्ट कर रखा था। वैश्य भी राजा के उदार वचनों तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न रहते थे। शूद्र उनके सतत यज्ञों से प्रचुर भोजन तथा दान प्राप्त करके संतुष्ट होते थे। इस प्रकार महाराज गई अपनी समस्त प्रजा के अत्यधिक संतुष्ट रखते थे। जब ब्राह्मणों एवं साधुओं का सम्मान किया जाता है तो वे सम्मान और सेवा करने वालों को अपने पूर्ण कर्मों का एक अंश हर्ष प्रदान कर देते हैं। अतः जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवाया। मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा और निष्फट भाव से उसकी सेवा करें। नमः विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी ते नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि प्राश्चत देश तारिणे। सब लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलेंगे पीछे पीछे। यद्यपि महाराज गई में इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी। जिन राजाओं से महाराज गय को युद्ध करना पड़ता, वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते हैं। वे महाराज गई के युद्ध से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंट प्रदान करते थे। इसी प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा गय को अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए अपने पूर्ण कर्मों का छठा अंश सहर्ष प्रदान किया था। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में और तात्पर्य में लास्ट में बोलते हैं कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षान्तिते ज्ञानम ज्ञानी नास्तत्वदर्शिनः। के किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना है हमें, जो भी ज्ञान हम प्राप्त करने जाते हैं उसके अनुसार उस टीचर, उस आध्यात्मक या तो गुरु के पास जाना चाहिए। तो हम लोग जैसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त की प्राप्ति की रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें गुरु के पास जाने के लिए प्रभुपाद जी जरिया बताते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब ये हमें अगर समझ आई तो ये जो इंद्रिय तृप्ति की जो परेशानी होती है हर एक मनुष्य को, उसको दूर करने के लिए एक ही ये रास्ता है। जैसे महाराज गई थे, उनको कोई भी इंद्रिय तृप्ति की कोई परेशानी नहीं थी। वैसे तो भगवान विष्णु के अंश थे, भगवान विष्णु के एक्सपांशन थे, लेकिन फिर भी उनके माध्यम से, उनके उदाहरण, उनके जरिए से हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए भी कुछ चांस है। गाते हैं ना हम हर सुबह रे, प्रेम भक्ति यहाँ होती अविद्य विनाशयते। कितने लोगों को प्रेम भक्ति का प्राप्त करना है? अरे इतने क्यों झिझकते हो, मुफ्त में मिलती है रक्षा। अभी देखिए ये अध्याय में जैसे ये स्कंध है, इसमें जब ये अध्याय से हम जब शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत सारे नाम बताए जाते हैं, तो कभी कभी सवाल उत्पन्न होता है। देखिए ये सब नाम को हम पढ़ के क्या करेंगे, क्या मिलेगा हमको, है ना? लेकिन ये सब भगवान के अनुयायी है, भगवान के सब अंश है, इसलिए भगवान के भक्तों का नाम लेने से हमें बड़ा लाभ मिलता है, बड़ा लाभ होता है। भक्त भगवान कहते हैं कि अहम भक्त परिधन हो है? और भक्ते भक्त जन प्रिय है कि मैं तो भक्तों का परिधन हूँ, और जो भक्तों के भक्त है वो भी मुझे अत्यंत प्यारे हैं। तो इसीलिए जैसे हम ये भगवान के अंश के जो परंपरा में, ये फैमिली ट्री में जो नाम आते हैं, सब नाम लेने से हमें एकदम से अच्छा फायदा रहता। मैं आपको एक इसी युग का, इसी समय का उदाहरण देता था। गिरिराज स्वामी एक लेक्चर में बता देते कि अमेरिका में हमारा जो एक बड़ा मंदिर जब शुरू हुआ तो वहाँ कुछ गुंडे लोग आ गए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि यहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, हमारे देश में ये लोग कहाँ से आ गए हैं, क्यों आ गए, इनको भगाना चाहिए ना। ये तो मायापुर में भी हुआ था, मायापुर में भी जब हमारा मंदिर के लिए जगह ली गई, मंदिर बनना शुरू हुआ, तो वहाँ भी कुछ गुंडे लोग थे जिन्होंने हमारे भक्तों के ऊपर आक्रमण किया था। वहाँ तक इतना आक्रमण किया था कि एक जो भक्त है उनका तो पैर भी काट दिया था। कलयुग है, बॉम्बे में भी जब शुरू में प्रभुपाद जी परिश्रम कर रहे थे, भक्त लोग को भेजा था, भक्त लोग परिश्रम कर रहे थे, जगह मिल रही थी, जगह मिल गई थी, और वहाँ भी प्रोफेशनल गुंडे थे कि यह जगह में आप अभी मंदिर नहीं बना सकते हो, तो ये तो चलता ही रहता है। तो गिरिराज स्वामी जी बता रहे थे कि जैसे ये गुंडों ने आक्रमण किया तो वहाँ के भी भक्त थे, उन्होंने भी सामना किया, तो काफ़ी मतलब एक दूसरे के बीच में मारामारी हो गई, फिर कुछ लोग पकड़ा गए, तो फिर कोर्ट में बुलाया गया था, कोर्ट केस हुआ, तो जो गुंडे लोग थे उनका जो लॉयर था, एडवोकेट था, उन्होंने एक भक्त का नाम दिया कि ये भक्त थे, उसको आकर सारा सवाल जवाब करना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोगों को हरा दिया जाए और हमारा मंदिर वहां से हटा दिया जाए। तो उस भक्त को जब बुलाया गया तो सब बाकी भक्त लोग चिंतित थे, क्योंकि वो झट भरत की तरह था, बहुत उनके अंदर बहुत ही शांति थी, बहुत कम से, बड़ी मुश्किल से बहुत कुछ, थोड़ा कुछ बोलता था, जब करता था, क्लास में आता था, प्रसाद लेता था, प्रचार में चला जाता, बुक पुस्तकों का वितरण करता था, लेकिन वैसे सोशली वो इतना ज्यादा बोलते नहीं थे, तो सब भक्त लोग चिंतित थे कि क्या होएगा अभी। ये तो बोल ही नहीं पाएगा तो हम लोग कोर्ट के सहार जाएंगे। शुरू में कोर्ट केस में उनको ये पूछा गया कि आपके मंदिर में कितने भक्त शामिल थे और कौन कौन से भक्त थे, भक्त का नाम बता दिया जाए। तो जैसे उन्होंने भक्त का नाम लेना शुरू किया तो एक उसके अंदर अद्भुत शक्ति आ गई, और जैसे जैसे नाम बोलता गया कि कृष्णदास, बलराम दास, चैतन्य दास, नित्यानंदा, ऐसे जैसे जैसे जो भी भक्तों का नाम था, जैसे जैसे बोलने लगा भक्तों का नाम, तो उसके अंदर अद्भुत शक्ति, एक ऊर्जा शक्ति की तरह उत्पन्न हो गया, और सब लोग हैरान हो गया कि ये कितना मतलब शक्ति के साथ बोल रहा है। उसके बाद उसके अंदर भगवान ने उसको ऐसी शक्ति दे दी कि जो जो भी सवाल उनको पूछे गए वो लगातार सवाल का जवाब देता गया, और इतना अच्छा जवाब देता गया कि हमारा वकील भी हैरान हो गया कि इतना अच्छा जवाब ये भक्त कैसे दे रहा है, कमाल हो गया। और जो जज था उसने कोर्ट केस जो था वो हमें हमारी जीत में दे दिया कि ठीक है ये भक्त लोग सही है और ये जो गुंडे लोग हैं वो गलत है, तो हम लोग कोर्ट केस जीत गए, कमाल हो गया। देखिए ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ और गिरिराज स्वामी भी इसलिए दे रहे थे कि भगवान का भक्तों का जो नाम है, हम लोग जब दीक्षित होते हैं तो जो दीक्षित नाम मिलता है उसकी कितनी महिमा है। शुरू में हम जब आते हैं भक्त प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो हमें बताया जाए कि तुम्हारा नाम भक्त जो भी है, भक्त कमलेश है, भक्त सिंधु है, जो भी है, हम भक्त शब्द जोड़ते हैं, भक्त शब्द का कितना महत्व है वो चीज हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक भक्त है, हमें भक्त का भक्ता के रूप में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक आशीर्वाद के रूप में प्रभुपाद जी ने हमें जरिया दिया है। तो जैसे जैसे वो भक्त का नाम बोलता गया उसके अंदर शक्ति आई। हमें भी याद रखना चाहिए कि जब गुरु का हमें आशीर्वाद मिला है, गुरु का आशीर्वाद मिला है तो जो नाम हमें दिया जाता है उसका सम्मान करना चाहिए, और गुरु का भी बोध जितना भी भाविक श्रद्धा प्रेम पूर्वक हम उनका सम्मान करें इतना हमारे भक्ति के लिए अच्छा है। जैसे महाराज गई का यहाँ उदाहरण दिया गया है कि वो इतने ज्ञानी थे, इतने मतलब उनके अंदर भक्ति भी थी कि जो भी थे क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय राजा थे, उनको भी वो संतुष्ट करते थे, जिसके साथ वो युद्ध करते थे उनको संतुष्ट करते थे, मतलब जो दुश्मनी के रूप में सामने युद्ध करने के लिए आते थे उनको भी वो शास्त्र के प्रमाण से, शास्त्र के अनुसार वो युद्ध करते थे और फिर उनको शिक्षा भी देते थे। जब युद्ध जीत जाते थे तो सामने वाला राजा जो हार भी जाता था फिर भी वो इतने खुश होते थे कि महाराज गई को दानपुण करते थे। हमें इसे क्या समझ आती है कि दुश्मन भी है, दुश्मन को अगर हम दुश्मन के साथ में हमारा क्या युद्ध है, आज के युग में हमारे लिए भक्त के लिए क्या युद्ध है कि हमें प्रचार करना है। हर एक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, उस अहंकार को हम कैसे हटा दिया जाए। अगर दूसरों को प्रचार करके हमें उनके जीवन का अहंकार को दूर करना है तो सबसे पहले हमको अपना जो अहंकार है उनको हटाना पड़ेगा, उनके लिए दवाई देनी पड़ेगी हरिनाम की। भगवान के भक्तों का नाम लेने से एक सिंपल भक्त सारा कोर्ट केस जीत सकता है। भगवान का नाम हम लोग सबको देते हैं क्योंकि हम बोलते हैं कि चेतो दर्पण मार जन्म, कि तुम्हारे हृदय के अंदर सफाई होगी, तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे, तुम भक्त बनोगे, भक्ति करते करते तुम भगवान के स्वधाम पहुंचोगे। तो ये हमें अच्छी तरह समझना कि युद्ध करते करते भी हम लोग दूसरों का मतलब कल्याण कर सकते हैं। जैसे जंबुवन और जंबुवती थी, उसने जी भगवान कृष्ण की लिए कितनी तपस्या की, कभी आएंगे भगवान, कभी आएंगे क्योंकि राम राज्य में राम भगवान ने उनको बोला था कि मैं आऊँगा, तुझे दर्शन दूंगा, उसका प्रमाण भी दिया था। कि तेरे को और कोई जीत नहीं पाएगा, जब तू हारने लगेगा तुझे समझ आ जाएगी कि मैं आ गया हूं। कितने दिन क्या युद्ध हुआ था? 28 दिन। 28 दिन का युद्ध चला और उसके बाद जम्बुवान भगवान को प्रणाम करता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे जहां युद्ध होता है वहां मतलब दुश्मनी बढ़ती है, कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जहां प्रेम बढ़ता है। और प्रभुपाद जी ने हमें वो मार्गदर्शन दिया कि ये जो युद्ध में हम सब लोग आए हैं, भक्त के रूप में आए हैं, भक्त का टाइटल दिया है, गुरु को आशीर्वाद मिला है, एक आध्यात्मिक नाम मिला है, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम या तो अपराधी होता है कि कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो आंदोलन है, ये जो भक्ति का मार्ग है कितना महत्वपूर्ण है। इसको समझना हमें प्रयास करेंगे तो समझेंगे। और प्रयास कैसे करेंगे? अपने सिर्फ मन से नहीं करना है, दिल से करना है और ग्रंथों के साथ करना है, साधु संघ के साथ करना है। ये जब हम इसी रास्ते पर आगे चलेंगे प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार तो हम लोग बहुत आगे पहुंच सकते हैं। जैसे भरत जी थे, राजा राम थे और दशरथ महाराज थे, तो दशरथ महाराज भी महाराज गई की तरह कितने मतलब ज्ञानी थे, कितने भक्ति भावना से उनका राज चला रहे थे। लेकिन उनका नियम था कि कोई भी जैसे प्रॉमिस देते थे तो प्रॉमिस के अनुसार चलते थे, है ना। लघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, है। तो जब कई कई ने दो वचन मांगे तो उन्होंने मना नहीं किया। वो राजा थे, बोल सकते थे, नहीं नहीं ये मैं नहीं दे सकता, वो कुछ और मांगो। वहां तक के राम भी उनके पास है कि नहीं अब इस वचन का पालन करो, ये रघुकुल की रीति है। वहां तक के अनाउंसमेंट भी हो गया था कि राम भगवान के अभी अभिषेक होएगा, फिर भी सब कुछ छोड़ के दशरथ महाराज ने प्राण छोड़े लेकिन अब की प्रॉमिस नहीं छोड़ी। आज के कलयुग में क्या है कि सब लोग प्राण के लिए कुछ भी करेंगे और हर समय झूठ बोलते हैं, हर छोटी बात में झूठ बोल देते हैं। बाहर जाओ देखो, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमारे भक्ति में रुकावट आएगी। जितना ज्यादा हम झूठ बोलेंगे इतना ज्यादा हम पीछे जा रहे हैं, इतना ज्यादा हम माया की जाल में डूबते जा रहे हैं। तो इसके बच के रहना है। भरत महाराज को जब पता चला वो आए तो वो सीधे जहां राम थे उनके पास जाने लगे। वो सोच रहे थे कि मैं राम को जाकर प्रार्थना करूंगा, दंडवत प्रणाम करूंगा और किसी भी न किसी भाव से मैं उनको वापस ले आऊंगा। जब वो जा रहे थे तो सब प्रजा उनके साथ में चलने लगी और सब लोग उनको सलाह दे रहे थे कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये करना है, किसी भी तरह राम को वापस ले आना है। वहां तक कैसे बताया जाए कि झाड़ू वाली थी वो भी बोल रही थी कि हाँ तुम राम को लेकर आ जाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है ना। कुछ लोग ये सोचते थे कि माँ और बेटे ने मिलके कुछ छल कपट का रास्ता निकाला है। जब आगे जाते हैं तो भरद्वाज ऋषि भरद्वाज मुनि का आश्रम आता है तो वहां पर भरद्वाज भी उनका सम्मान करते हैं और उनके पास सिद्धि थी, जिस सिद्धि के द्वारा उन्होंने सारा एक राज बसा दिया, इतना अच्छा राज बसा दिया कि अयोध्या उसके सामने कुछ नहीं दिखने में था। अपनी जो सिद्धि के द्वारा उन्होंने इतना अच्छा राज बताया कि जितने भी लोग साथ में थे उनके सबके लिए रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ कर दिया। और फिर भरद्वाज मुनि ने बोला भरत को कि तुम अभी इस राज्य के राजा बन जा। भरत ने बोला एक क्षण आप रुकिए, और गए एक तुलसी दल लेकर आए और तुलसी दल से वो बोलते हैं कि ये जो राज्य के अगर कोई लायक है तो राम है, राम भगवान है, मैं नहीं हूं। इससे क्या हुआ कि उसने अपना भाव, अपनी भक्ति सब कुछ सामने प्रकट किया जनता के लिए, और इसके बाद जनता को भी जो संकोच था वो दूर हो गया। जनता भी बहुत सारी सोचती होगी कि सब इसमें कोई छल कपट है। पूछा गया कि तुम क्यों जा रहे हो राम के पास, तो बोलते हैं कि जब तक मैं आ रहा हूं सब लोग मुझे सलाह देने वाले ही मिल रहे हैं, कोई मुझे समझने वाला नहीं मिला। मैं उस व्यक्ति के पास जा रहा हूं, उस भगवान के पास जा रहा हूं जो मुझे समझते हैं। हम लोगों को भी इस उदाहरण को समझ के आगे बढ़ना चाहिए कि हमें भगवान ने ऐसे व्यक्ति भेजा है, श्रील प्रभुपाद भेजे, कि जो हमें समझ पाए। उन्होंने ये भी देखा कि इन लोगों की समस्या क्या है, मनुष्यों की आज के युग में समस्या क्या है। प्रभुपाद जी इतने प्रैक्टिकल थे, ये नहीं था कि एकदम से कठोर थे। जो जो भी सिचुएशन आता था, जो जो भी समस्या आती थी, तो प्रभुपाद जी उनको अच्छी तरह से सोच समझ के फिर आगे कदम उठाते थे। उन्होंने देखा कि देवियां सब इतनी अच्छी तरह से, इतनी अच्छी भावना से भगवान की पूजा पाठ कर सकती है और करती है, तो उन्होंने वो भी दे दिया कि चलो तुम लोग भी जा आओ भगवान की पूजा करो। लोगों को चाइना भेजा, रशिया भेजा, जहाँ कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो उनको भी वहाँ फ्रीडम दे दे कि आप जाओ, जो भी करना पड़े करो, लेकिन इस युद्ध भूमि में आपके जीत कर ही आना है। भगवान के भरोसे चलो, गुरु परंपरा के भरोसे चलो, और जैसे जैसे आप चलते जाओगे तो आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, प्रभुपाद जी बोले, मेरा आशीर्वाद है। जैसे तमाल कृष्ण महाराज सबसे पहले चाइना गए तो बता रहे थे कि जैसे वो इमिग्रेशन से बाहर निकले तो उसके पीछे पीछे दो तीन लोग घूमते रहे। सुबह शाम तक वो जहां भी जाते तो कोई ना कोई लोग घूमते रहते थे। चाइना का ऐसा नियम है कि कोई भी देशी लोग आते हैं तो उनके पीछे दो तीन डिटेक्टिव भागते रहते, वो किसी का बिल्कुल भरोसा नहीं करते। तो ऐसे चलते चलते भी तमाल कृष्ण महाराज सोच रहे कि मैं कैसे प्रचार करूंगा, कि हर वक्त किसी ना किसी की निगाह है मेरी ऊपर। एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गया, तो पुस्तक नहीं निकालते थे लेकिन लोगों से बात करते थे, प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखते थे वहां भी कोई खड़ा है, इधर से निकले तो वहां भी कोई अवधूत खड़ा है। तो कुछ समय के बाद एक जो डिटेक्टिव था चाइना का, वो उनके पास आए। उन्होंने बोला कि मेरी एक प्रार्थना है, आप जो भी करने के लिए आए हैं, आप कुछ ऐसे लगते कि बाहर एक कोई पृथ्वी लोक से बाहर से कहीं आए हो, हम जानना चाहते हैं आप कौन हैं, आप ये क्या करते हो। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने सोचा अभी मैं इसको प्रचार करूंगा तो इसमें दो बात हो सकती है, या तो अगर ये सिपाही है तो मेरे को तो बंद कर देंगे, और या अगर भगवान की कृपा हुई तो उसकी भी मुक्ति होगी, प्रचार यहाँ से शुरू होएगा। तो देखो इतना बड़ा टेस्ट था उनके लिए, इतनी बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया, उसी व्यक्ति ने महाराज को आगे इतना सारा मदद किया। तो ये हमारी एक तरह से युद्ध भूमि में जो हम उतरते हैं, हमें जो प्रचार करने का है, प्रचार तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जैसे प्रभुपाद जी बोलते प्रीचिंग इज द एसेंस है, जितना प्रचार हम करेंगे इतना ज़्यादा हम लोग हमारी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। दूसरों का तो कल्याण होएगा लेकिन हमारे लिए भी बहुत अच्छा है प्रचार करना। हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा। इसलिए हमें महाराज गए की तरह, आज महाराज दशरथ की तरह बहुत सारे हमारे जो महाराज बन गए, जनक महाराज एक महाजन भी थे, ऐसे ऋषभ देव थे, तो सारा लिस्ट बना सकते हैं कि ये राजा लोग ने कितनी तपस्या किया, कितना परिश्रम किया, कैसे सारी जनता को खुश रखते थे। तो परिश्रम करना हमारा नेचुरल कर्तव्य है, हमारे अंदर है नेचुरल। जितना ज्यादा हम परिश्रम करेंगे इतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए सर्व से सर्वश्रेष्ठ बनिए, जैसे कृष्ण भगवान बोलते हैं ना कि योगी नाम आप ही सर्वेश्वर, सबसे बड़ा योगी बनो। किस तरह के योगी? भक्ति योगी बनो, भक्त भक्ति का प्रचार करो, भक्ति का भक्ति का हर रोज अपने आप हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। जो भी भक्ति का नियम है उसका पालन करो। हमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं प्रभुपाद जी ने, बहुत सिंपल नियम है, मंगल आरती में जाना, प्रसाद खाना, प्रचार करना। आप बाहर जाकर देखोगे तो बाहर लोग कितना परिश्रम करते हैं, उनके लिए कितना कष्ट होता है, 10-10 घंटा, 12-12 घंटे एक जगह पर डटे रहना पड़ता है, उसके बाद कुछ चंद पैसा मिलता है और भी आने के पहले खर्च हो जाता है। और यहाँ प्रभुपाद जी की कृपा से सुबेरे का प्रोग्राम, दोदोबा प्रसाद, जितना भी आप चाहो तो यहाँ बैठे बैठे भी प्रचार कर सकते हो। इतने लोग आते हैं हमारे मंदिर में, कितने लोग आते हैं आप देखो, सैटरडे संडे आप खड़े रहो तो अब एक को प्रचार करते तो उसमें जब तक 2 मिनट में आप प्रचार कर लिया तो 500 आदमी तो और निकल ही गए। तो हम लोग कितने लोगों को पकड़ पा रहे हैं, 2%, 3%। इसलिए जितने भी भक्त है यहाँ उनको भक्ति में और प्रचार में लगी जाना चाहिए। इसके द्वारा क्या है कि प्रभुपाद जी बहुत खुश रहेंगे, प्रभुपाद जी को खुश करेंगे तो ठाकुर जी भी खुश हो जाएंगे। और ठाकुर तो बोलते हैं कि मैं भक्तों का पराधीन हूँ, आप सिंपल भक्ति करोगे तो ठाकुर अपने आप हमारे पास आएंगे, हम प्रचार करेंगे तो ठाकुर अपने आप हमारे पास आते हैं, हमारे साथ में रहते हैं। तो ठाकुर के पीछे भागने का नहीं है, उनका आदेश का पालन करना है, उनके आदेश का पालन करो तो अपने आप हमारे पास आएंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई सवाल या तो कमेंट्स? थैंक यू। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।